नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इस पर बात करेंगे
जी।
और खास तौर पर इसके एक अध्याय पर जिसका नाम है चौथा और अंतिम निर्देशन
जी।
इसमें पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालय प्रवास का एक बहुत गहरा अनुभव बताया है, जब उन्हें अपने गुरुदेव से एक अत्यंत गंभीर, एक निर्णायक निर्देश मिला था।
हाँ बिल्कुल।
तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की
जी।
कि ये अनुभव क्या था और इसका क्या महत्व है। तो पूज्य गुरुदेव ये बताते हैं कि उन्हें चौथी बार हिमालय बुलाया गया, पर इस बार तरीका कुछ अलग था
जी।
उन्हें स्थूल शरीर से नहीं जाना था बल्कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने का निर्देश मिला।
हाँ, मतलब एक तरह से अपनी चेतना या ऊर्जा रूप में।
हाँ बिल्कुल, अपने भौतिक शरीर से अलग होकर। रास्ता वो कहते हैं परिचित था और मिलने की जगह भी वही थी, वो मखमली गलीचे वाली
जी, वही स्थल।
वहाँ उनके गुरुदेव मिले, उन्होंने पहले के जो काम थे उनपे तो प्रसन्नता जाहिर की, पर साथ ही आने वाले समय को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता भी जताई। कहा कि पिछला काम तो मतलब एक स्थानीय स्तर का था, सामान्य था, पर अब जो अगला काम है वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत विराट।
हाँ, और देखिए यहाँ ये बात कितनी अहम है कि गुरुदेव दो तरह के संकटों की बात एक साथ कर रहे हैं।
एक तो स्थूल जगत का संकट,
स्थूल जगत मतलब हमारा बाहरी वातावरण।
हाँ, मतलब हवा, पानी, जमीन
सब विषाक्त हो रहे हैं,
और
इसकी वजह वैज्ञानिक कुशलता और पैसे का लालच, अर्थलोलुपता, इससे जो मशीनीकरण हुआ है, जो अणु आयुधों का खतरा बढ़ा है और जनसंख्या विस्फोट, ये सब।
अच्छा, ये तो हुआ बाहरी संकट
जी। और दूसरा है सूक्ष्म वातावरण का संकट,
ये और भी गहरा है।
सूक्ष्म वातावरण
यानी
लोगों की सोच, उनके विचार, उनके कर्म, उनका दूषित हो जाना। इस अनदेखे प्रदूषण की वजह से पूज्य गुरुदेव के शब्दों में मनुष्य नर पशु और नर पिशाच जैसे काम कर रहा है।
बापरे, नर पशु नर पिशाच।
हाँ, और गुरुदेव के अनुसार यही बिगड़ा हुआ भीतरी माहौल, ये सूक्ष्म प्रदूषण ही धरती को असल में नरक बना रहा है।
समझ गए। तो मतलब ये बाहरी और भीतरी, ये स्थूल और सूक्ष्म संकट, ये आपस में जुड़े हुए थे।
बिल्कुल, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। और इन्हीं भयानक स्थितियों से, इसी दोहरे संकट से निपटने के लिए गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव को वो असाधारण काम सौंपा।
हाँ, वो बड़ा काम।
हाँ, जिसे अद्भुत और अलौकिक ही कहा जा सकता है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें एक से पांच बनना पड़ेगा।
एक से पांच, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका अर्थ था अपनी ही सत्ता को, अपनी चेतना और शक्ति को पांच हिस्सों में विभाजित करना।
पांच हिस्सों में, जैसे?
हाँ, जैसे महाभारत में पांच पांडव थे या रामायण में पांच रामदूतों का वर्णन आता है, कुछ वैसा ही। और फिर इन पांच रूपों से पांच अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम करना था।
अच्छा।
और इस पूरी प्रक्रिया को, इस विभाजन और विस्तार को नाम दिया गया सूक्ष्मीकरण।
सूक्ष्मीकरण मतलब अपनी स्थूल सत्ता को सूक्ष्म ऊर्जा में बदलकर कई गुना शक्तिशाली बनाना।
बिल्कुल सही, यही इसका सार था, अपनी क्षमताओं को सूक्ष्म स्तर पर ले जाकर असीम करना।
तो फिर वो पांच मोर्चे या पांच काम कौन कौन से थे जिन पर काम करना था?
जी, वो पांच कार्य भी स्पष्ट रूप से बताए गए थे। पहला था वायुमंडल का संशोधन,
यानी बाहरी वातावरण का सुधार, हवा, पानी वगैरह।
हाँ, जो स्थूल प्रदूषण है उसको ठीक करना। दूसरा, वातावरण का परिष्कार, ये सूक्ष्म स्तर पर था।
अच्छा, लोगों की सोच और भावनाओं वाला प्रदूषण।
बिल्कुल, लोगों के मन और विचारों को साफ करना। तीसरा था नवयुग का निर्माण, एक बेहतर सतयुगी दुनिया की नींव रखना। चौथा, महाविनाश का निरस्तीकरण, समापन, यानी दुनिया पर जो बड़े खतरे मंडरा रहे थे, जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं, उन्हें टालना या खत्म करना।
और पांचवा?
और पांचवा था देव मानवों का उत्पादन अभिवर्धन।
देव मानव मतलब
ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जिनमें दिव्य गुण हों, उनका निर्माण करना और उनकी संख्या बढ़ाना, ताकि वो नव युग के निर्माण में सहायक हों।
ये तो बहुत ही बड़े और गहरे काम है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, ये तो मनुष्य की चेतना को बदलने का प्रयास लगता है।
बिल्कुल, समाधान केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरे, आंतरिक और सूक्ष्म स्तर पर देखा गया। इसीलिए पूज्य गुरुदेव को निर्देश मिला कि अब लौकिक क्रियाकलापों से, मतलब दुनियावी कामों से, पूरी तरह विराम लेना होगा, खुद को समेटना होगा,
सारी ऊर्जा इसी साधना में लगानी होगी।
हाँ, पूरी तरह से इसी सूक्ष्मीकरण साधना के लिए समर्पित होना होगा।
और पूज्य गुरुदेव ने, उन्होंने इस इतने बड़े, इतने कठिन निर्देश को कैसे स्वीकार किया?
पूरे समर्पण के साथ। पूज्य गुरुदेव का उत्तर था कि वो तो केवल एक माध्यम है, एक यंत्र। करने वाले तो स्वयं गुरुदेव ही हैं, वो तो बस उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं।
क्या विनम्रता है
जी। और इस पर गुरुदेव ने उन्हें आश्वासन भी दिया, कहा कि इस कठिन साधना में जो आसुरी शक्तियां बाधा डालेंगी उनसे उनकी रक्षा होगी और उन्हें लगातार अदृश्य ऊर्जा, दिव्य सहायता मिलती रहेगी। इसके बाद पूज्य गुरुदेव शांति कुंज लौटे और जैसा निर्देश था रामनवमी 1984 से उनकी वो विशेष साधना सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना वो आरंभ हो गई।
तो ये था वो चौथा और अंतिम निर्देशन। असल में ये एक गहन आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया थी।
हाँ, एक कायाकल्प कह सकते हैं।
और सूक्ष्मीकरण के माध्यम से वैश्विक संकटों का, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, उनका समाधान खोजने का एक अनूठा आह्वान था ये।
बिल्कुल। और ये आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है ना।
हाँ, क्या
कि आज के समय में जब हम बाहरी दुनिया की इतनी सारी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर्यावरण संकट है, सामाजिक टकराव है, युद्धों का डर है, तब क्या किसी व्यक्ति के स्तर पर इस तरह का गहरा आंतरिक रूपांतरण, इस तरह के सूक्ष्म प्रयास, क्या इनका कोई महत्व हो सकता है?
क्या अंदर का बदलाव बाहर की दुनिया को सच में बदल सकता है?
हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।